लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस के धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थ यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo le catechesi sulla passione di evangelizzare.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम सुसमाचार के उत्साह पर अपनी धर्म शिक्षा को जारी रखते हैं। यह सुसमाचार की घोषणा मात्र नहीं बल्कि उत्साह में सुसमाचार की घोषणा है, जिसे हम द्वितीय वैटिकन महासभा के आधार पर आज प्रेरित होने का अर्थ क्या है बेहतर रूप में समझने का प्रयास करेंगे। प्रेरित शब्द हमें यीशु के द्वारा चुने गए 12 शिष्यों के दल की याद दिलाती है। कभी कभी हम उन प्रेरितों को संतों की संज्ञा देते हैं या सामान्य तौर पर धर्माध्यक्ष गण, क्योंकि वे यीशु के नाम पर भेजे जाते हैं। लेकिन क्या हम इस बात का अनुभव करते हैं कि हर ख्रिस्तीय प्रेरितों की गिनती में आता है? वास्तव में हम सभी एक कलीसिया में प्रेरित होने के लिए बुलाए गए हैं, जिसे हम विश्वास की घोषणा धर्म सार में करते हैं। अतः एक प्रेरित होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ एक प्रेरिताई हेतु भेजा जाना है। हम इसे पुनरुत्थान की घटना में पाते हैं, जहां पुनर्जीवित प्रभु अपने पिता की ओर से मिली अपनी शक्ति को पवित्र आत्मा के द्वारा शिष्यों को प्रदान करते हुए उन्हें दुनिया में भेजते हैं। संत योहन अपने सुसमाचार में इसके बारे में लिखते हैं, यीशु ने पुनः अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले, जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के द्वारा ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो।
Un altro aspetto fondamentale dell'essere apostolo è la vocazione.
प्रेरित होने का एक दूसरा मूलभूत आधार हमारी बुलाहट है, अर्थात हम बुलाए गए हैं। यीशु ख्रिस्त ने शुरू से ही अपने शिष्यों को, जिन्हें वे चाहते थे अपने साथ रहने हेतु बुलाया। वे एक समूह के रूप में उन्हें प्रेरितों की संज्ञा देते हैं, जिससे वे उनके साथ रहें और जिन्हें वे अपनी प्रेरिताई हेतु भेज सकें। संत पौलुस कुरुंथियों के नाम अपने प्रथम पत्र के शुरू में ही लिखते हैं, पौलुस जो ईश्वर की इच्छा द्वारा बुलाया गया और यीशु ख्रिस्त का प्रेरित नियुक्त हुआ। वहीं रोमियों के नाम अपने पत्र में पौलुस मसीह का सेवक जो ईश्वर द्वारा प्रेरित चुना गया लिखते हैं। वे इस सच्चाई पर बल देते हैं कि वे ना तो मनुष्य की ओर से और ना किसी मनुष्य द्वारा प्रेरित नियुक्त किए गए हैं, बल्कि ईसा मसीह द्वारा और पिता परमेश्वर द्वारा, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। ईश्वर ने उन्हें माता के गर्भ से ही चुन लिया था। 12 शिष्यों और संत पेत्रुस का साक्ष्य हमें आज भी चुनौती प्रदान करता है। वे हमें अपने मनोभावों, अपने चुनावों, निर्णयों के आधार पर अपने जीवन का पुनरावलोकन करने का निमंत्रण देते हैं। सारी चीजें ईश्वर के एक मुफ्त बुलावे में निर्भर करती हैं। ईश्वर हमें सेवा के लिए भी चुनते हैं, जो कभी कभी हमारी योग्यताओं के परे या हमारी आशातीत होती है।
Alla chiamata ricevuta come dono gratuito, bisogna rispondere gratuitamente.
ईश्वर का जो उपहार हमें मुफ्त में मिला है, हमसे मुफ्त में प्रत्युत्तर की मांग करता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि द्वितीय वैटिकन महासभा कहती है ख्रिस्तीय बुलाहट अपने स्वभाव में ही एक प्रेरितिक बुलाहट है। यह हमारे लिए एक सामान्य बुलावा है, जैसे कि हमारा मानवीय सम्मान जिसे हम पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में साझा करते हैं, जहां हमें एक ही कृपा और पूर्णता प्राप्त करने की बुलाहट मिली है, जहां हम एक ही मुक्ति के, एक ही आशा और एक ही विखंडित करुणा के भागीदार होते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यह एक बुलाहट है जो संस्कारीय अनुष्ठाता धर्म सामाजिक और लोक धर्मी नर नारियों को अपने में सम्माहित करती है। यह सबों की बुलाहट है। ख्रिस्तीय बुलाहट की इस निधि को हमें दूसरों के संग साझा करने की जरूरत है। यह बुलाहट हमें कलीसिया में अपने प्रेरितिक कार्य को सक्रिय और सृजनात्मक रूप में पूरा करने के योग्य बनाता है, जहां हम प्रेरिताई की विभिन्नता को उनकी एकता में पाते हैं। प्रेरितों और उनके उत्तराधिकारियों को शिक्षण, प्रबंधन और पवित्रीकरण के कार्यभार यीशु ख्रिस्त के नाम और अधिकार में मिले। संत पापा ने कहा कि आप लोक धर्मियों को भी पुरोहिताई, नबी और यीशु ख्रिस्त की राजकीय प्रजा का अधिकार मिला है, जिसे आप अपने विभिन्न कार्यों के द्वारा कलीसिया और दुनिया में पूरा करते हैं। इस संरचना में वैटिकन महासभा द्वारा लोक धर्मियों का कलीसियाई अधिकारियों के संग सहभागिता का अर्थ क्या है? क्या यह नई उभरती स्थितियों के लिए मात्र रणनीति अनुकूल है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ इससे भी बढ़कर है, जो इस समय की असामयिकताओं के परे है, जो हमारे लिए भी अपना मूल्य बनाए रखता है। प्रेरितिक एकता की संरचना के अंदर आदर्शों और प्रेरितिक कार्यों की विविधता को चाहिए कि वह कलीसिया में विशेष अधिकार प्राप्त श्रेणियों को जन्म ना दें। यह इसलिए क्योंकि ख्रिस्त की योजना के अनुरूप कुछ शिक्षक, पुरोहित और दूसरों के लिए रहस्यों के प्रकटकर्ता नियुक्त किए गए हैं। यद्यपि मानवीय सम्मान और सब विश्वासियों के सामान्य गतिविधि के संबंध में हम एक सच्ची समानता को साझा करते हैं, जिसके द्वारा हम मसीह के शरीर का निर्माण करते हैं। कलीसिया में अधिक सम्मान किसका है? पुरोहित का नहीं, बल्कि सभी ख्रिस्तियों का जो दूसरों की सेवा में हैं। संत पापा ने कहा,
tutti siamo uguali, siamo uguali. E quando una delle parti si crede più importante degli altri e un po' alza il naso così, sbaglia.
कलीसिया में सभी कोई बराबर हैं, और यदि कोई पुरोहित अपने को दूसरों से महत्वपूर्ण समझता है तो वह अपने में गलत है। यह यीशु की बुलाहट नहीं है। यीशु की बुलाहट हमसे नम्रता में दूसरों की सेवा की मांग करती है। ईश्वर की बुलाहट हमें पिता की महिमा करने को कहती है, जो समुदाय में प्रेममय सेवा द्वारा होती है, जिसके द्वारा हम प्रेरित होने का साक्ष्य देते हैं। मर्यादा की मांग हमें अपने संबंधों के कई पहलुओं पर पुनर्विचार करने को कहता है, जो सुसमाचार प्रचार के लिए निर्णायक है। उदाहरण के लिए, क्या हम जानते हैं कि हम अपने शब्दों के द्वारा लोगों के गरिमा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कलीसिया के अंदर रिश्तों को बर्बाद कर सकती है? जब हम दुनिया के साथ संवाद करने की कोशिश करते, क्या हम यह जानते हैं कि विश्वासियों के रूप में हमें एक दूसरे के संग कैसी वार्ता करनी चाहिए? क्या हम दूसरों को सुनते और उन्हें समझना जानते हैं, या हम उन्हें अपनी बातों को थोपते हैं? नम्रता में दूसरों को सुनना और उनकी सेवा करने में हम अपनी ख्रिस्तीय प्रेरिताई को व्यक्त करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा कि हम अपने को सवाल पूछने से न डरें, हम आडंबर से, दिखावे भरे स्थानों से दूर रहें। यह बपतिस्मा में मिली हमारी बुलाहट को सत्यापित करने में मदद करेगा कि हम कैसे कलीसिया में प्रेरितों की भांति दूसरों की सेवा में अपना जीवन जीते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Venturium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius e Spiritus Sanctus.
Amen.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अंत में युद्ध से पस्त यूक्रेन में मौजूद धर्म संघियों और समर्पित लोगों के महत्व को याद किया। अपनी धर्म शिक्षा माला के बाद संत पापा ने रूसी आक्रमण के शिकार यूक्रेनी लोगों को, पीड़ितों को सांत्वना देने वाली और शांति की महारानी माता मरियम को सौंप दिया। संत पापा ने विशेष रूप से कीव स्थित लावरा के ऑर्थोडॉक्स धर्म बहनों को याद करते हुए कहा, मैं कीव लावरा की ऑर्थोडॉक्स धर्म बहनों के बारे में सोचता हूँ। मैं युद्धरत पक्षों से धार्मिक स्थलों का सम्मान करने के लिए कहता हूँ। समर्पित धर्म बहने, प्रार्थना हेतु समर्पित लोग, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, ईश्वर के लोगों के समर्थन में हैं। इसके बाद संत पापा की नज़र मलावी की ओर जाती है, जहां विनाशकारी चक्रवात फ्रेडी ने 3 सप्ताह के अंतराल में लगभग 130 लोगों की जान ले ली, विशेष रूप से ब्लंटायर शहर को प्रभावित किया है। संत पापा ने कहा, मैं मलावी के लोगों के करीब हूँ जो हाल के दिनों में बहुत तेज चक्रवात से प्रभावित हुए हैं। मैं मृतकों, घायलों, विस्थापित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर इस आपदा से सबसे अधिक पीड़ित परिवारों और समुदायों का समर्थन करें। अंत में संत पापा ने स्पैनिश विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए अर्जेंटीना के राजनेताओं और सामाजिक नेताओं को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन्हें अपने परमाध्यक्ष कार्यकाल के 10 वर्षों के लिए शुभकामना पत्र भेजा, जो पिछले 13 मार्च को मनाया गया था। पत्र लिखने में जो एकता प्रदर्शित हुई है, वही संत पापा की इच्छा है। इसे जीवन में और दैनिक कार्यों में बनाए रखना अच्छा होगा, ताकि संवाद हो और राष्ट्र को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके। उधर दुराचार की रोकथाम पर दूसरी लैटिन अमेरिकी कांग्रेस में भाग लेने वालों को एक संदेश में संत पापा ने कलीसिया में यौन शोषण को रोकने के उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि बच्चे और कमजोर बुजुर्ग हमेशा सुरक्षित रह सकें। बैठक 16 मार्च तक पराग्वे के धर्माध्यक्ष सम्मेलन और नाबालिगों के संरक्षण के लिए परम धर्म पीठीय आयोग द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित सभा अनुसूयन पराग्वे में हो रही है। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित परम धर्म पीठीय आयोग के अध्यक्ष कार्डिनल शीन ओमाली ने संत पापा के संदेश को पढ़ा और इस विषय पर अपने व्यापक चिंतन की पेशकश की। कांग्रेस में भाग लेने वाले लैटिन अमेरिका और यूरोप से आते हैं। संत पापा ने अपने संदेश में प्रतिभागियों को रोकथाम के प्रेरित कहा। उन्हें उनके सभी प्रयासों में प्रोत्साहित किया जिसमें पराग्वे में स्थापित मानव गरिमा और दुर्व्यवहार की रोकथाम पर अध्ययन के लिए नए उद्घाटन केंद्र शामिल है जो इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में समर्पित है। सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के पक्ष में उनके काम को अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण बताते हुए और स्थानीय कलीसिया कैसे कार्य कर रही है इसका एक प्रतिबिंब संत पापा ने उनकी सहायता के लिए संस्थागत कदमों को याद किया। प्रेरितिक संविधान के प्रेडिकाते एवांजेलुम की घोषणा को याद करते हुए उन्होंने रोमन कूरिया को स्थानीय कलीसियाओं को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने के लिए कहा। उन्होंने कलीसिया में कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए हर स्थानीय कलीसिया की प्राथमिकता को रेखांकित किया। कलीसिया के कुछ हिस्सों में जहां संसाधनों की कमी के कारण पर्याप्त रोकथाम के उपाय अभी भी शुरुआती चरण में हैं, संत पापा ने उनके लिए विशेष सहायता का आह्वान किया ताकि क्रूर असमानताएं भी हमारी कलीसिया की विशेषता न बने। संत पापा ने इस बुराई का सामना करने और इसे फिर से होने से रोकने के लिए कलीसिया के नेताओं ने जो कुछ किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह बैठक हमारी कलीसिया में बदलाव की इच्छा की एक ठोस अभिव्यक्ति है और बैठक सुनने, चिंतन करने और एक दूसरे की मदद करने की धर्म सभा प्रक्रिया का प्रतिबिंब है और यूक्रेन में शांति वार्ता को फिर से सक्रिय करने के लिए हम अपनी सभी रचनात्मकता का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और पहला कदम युद्ध विराम होना चाहिए। उक्त बात वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने द एटलस ऑफ फ्रांसिस वाटिकन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक की प्रस्तुति के मौके पर ला सिविलता कैथोलिका के मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा। राज्य सचिव ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस मास्को और कीव दोनों जगह जाना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि शांति की सेवा तभी की जा सकती है जब वह दोनों राष्ट्रपतियों व्लादिमीर पुतिन और वलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने का प्रबंधन करते हैं। प्रवासन का मुद्दा जो पुस्तक प्रस्तुति के मौके पर कार्डिनल पारोलिन और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक का विषय भी था। कार्डिनल के अनुसार राज्यों की नीतियों में संत पापा के संकेतों का अनुवाद करना आवश्यक है। उन्होंने कहा इस पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे नीतियां कई बार प्रतिबंध की होती हैं, जबकि हमें एक अधिक खुली स्वागत योग्य नीति की ओर बढ़ना चाहिए। उधर एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव और परमाणु खतरों के बीच 2023 में पनमुनजोम युद्ध विराम की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कलीसियाओं के विश्व परिषद WCC ने दुनिया भर के कलीसियाओं को कोरिया शांति संधि के अपील अभियान में शामिल होने का आह्वान किया जो कोरियाई प्रायद्वीप के अस्थिर युद्ध विराम प्रणाली के संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2023 कोरियाई युद्ध विराम की 70वीं वर्षगांठ है जिसने 27 जुलाई 1953 को खुली शत्रुता को निलंबित कर दिया लेकिन 3 साल के संघर्ष को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया जिससे कोरियाई प्रायद्वीप विभाजित हो गया और खुले युद्ध के फिर से शुरू होने का खतरा आज भी बना हुआ है। उस दिन की अगुवाई में कलीसियाओं की विश्व परिषद दुनिया भर के अपने सदस्य कलीसियाओं को कोरिया पीस अपील के समर्थन में शामिल होने के लिए बुला रही है जो 2020 में दक्षिण कोरिया में शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो कोरियाई प्रायद्वीप शांति की ओर आगे बढ़ने के लिए आह्वान करने वाली आवाजों को बढ़ाना चाहता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।